بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو لازمی آزمائشی اشاعت جماعت نویں دسویں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 6 صفحہ نمبر 84 سے سنتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا۔ پیج نمبر 85۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھلتے پھولتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیتے۔ لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے۔ پیج نمبر 86۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب اعلی حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، کئی کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کے بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا، کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। उसे कभी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए उसे अपने काम पर फख्र या गरूर ना था। वो सबको अच्छा समझता और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता। जब कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जाए कमाल तक पहुँचाने में सारी नेकी और बड़ाई है, लेकिन दर्जाए कमाल तक पहुँचने की कोशिश ही में इंसान इंसान बनता है। हिसाब के दिन जब आमाल की जांच पड़ताल होगी तो खुदा पूछेगा कि मैंने जो इस्तेदाद तुझमें वदियत की थी उसे कमाल तक पहुँचाने और इससे काम लेने में तूने क्या किया और खल्कुल्लाह को इससे क्या फैज़ पहुँचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मायार है तो नामदेव नेक था और बड़ा भी। माखूज अज चंद हम असर, पेज नंबर 88। मश्क सवाल नंबर 1, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, नामदेव किस बाग में माली था? बे, मुसन्निफ को नामदेव की कौन सी हरकतों पर ताजुब होता था? जीम, इस सबक में नामदेव माली की कौन कौन सी खूबियां बयान की गई हैं? दाल, पानी की किल्लत बढ़ी तो नामदेव ने क्या किया? हाँ, नामदेव को बच्चों के इलाज में कैसे महारत हासिल हुई? सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, नामदेव था एक, नंबर 1 माली, नंबर 2 ड्राइवर, नंबर 3 चौकीदार, नंबर 4 खानसामा। बे, डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी था? नंबर 1 कमाल, नंबर 2 अंदाज़ा, नंबर 3 ख्याल, नंबर 4 जमाल। जीम, नामदेव ने सारे चमन को आईना बना रखा था। इस जुमले में आईना बनाने का मतलब है, नंबर 1 खूबसूरत बना देना, नंबर 2 रंगों से सजा देना, नंबर 3 साफ सुथरा कर देना, नंबर 4 नर्म नाजुक कर देना। दाल, माँ अपने बच्चों को देखकर होती है, नंबर 1 नाराज, नंबर 2 खुश, नंबर 3 अफसरदा, नंबर 4 मलूल। हाँ, नामदेव गरीब था और तनख्वाह भी थी, नंबर 1 ज़्यादा, नंबर 2 कम, नंबर 3 बहुत ज़्यादा, नंबर 4 बहुत कम। पेज नंबर 89, सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ेल खाली जगहें दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई डैश रखी है। बे, गदला पानी पौधों के हक में डैश था। जीम, डॉक्टर साहब शाही बाग को हकीकत में डैश बनाना चाहते थे। दाल, बाग के दारोगा खुद भी बड़े कारगुजार और डैश शख्स हैं। हे, एक साल बारिश बहुत डैश हुई। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ेल इख्तिबासात की तशरीह कीजिए। अलिफ, काम से सच्चा लगाव था और उसी में उसकी जीत थी। बे, उसे क्या मालूम था कि कजा उसके सर पर खेल रही है। जीम, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। इस सलाहियत को दर्जाए कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। सवाल नंबर 5, दिए हुए लफ्जी इशारों से कहानी मुकम्मल कीजिए। शख्स, पेट में दर्द, हकीम, बर्दाश्त से बाहर, गिज़ा, चेक करना, पूछना, जली हुई रोटी, आँखें, दवा, इलाज, शर्मिंदगी, आइंदा, नतीजा। सरगर्मी, तुलबा शजरकारी की अहमियत पर तकरीरी मुकाबला करें। खाका एक समान ही मजमून है जिसमें किसी शख्सियत के अहम और मुनफरिद पहलू इस तरह उजागर किए जाते हैं कि इस शख्सियत की जीती जागती तस्वीर पढ़ने वाले के जहन में पैदा हो जाए। हिदायत बराए असातजा, नंबर 1 ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے شجرکاری کی اہمیت واضح کیجیے. نمبر دو، خاکہ نگاری کی مذکورہ تعریف کی روشنی میں طلباء کو اس خاکے کی خوبیاں سمجھائیے. پیج نمبر 90، قدرت اللہ شہاب، ولادت 1917، وفات 1986. پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے. آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا. آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا. آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری رہے. ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. پاکستان کی بی تنظیم، رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے. شہاب نامہ آپ کی آبیتی ہے جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے. قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا. آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتا مقبول کتابیں ہیں. پیج نمبر 91، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری. ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا. ایک پرفضہ مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا. جی چاہا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے. ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا. اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے. پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں. ان سب کی پشت پر انگریزی میں جانسن اینڈ جانسن، لنڈن، 1854 درج تھا. چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ گئی تھی. پیج نمبر 92، ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے. بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بےحد شوق ہے. اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا. ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے. انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے. اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے. خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا. ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا. کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے. مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی سہولت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے. غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا. میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حکا اور پاندان پڑا تھا. انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا. پیج نمبر 93، جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے. میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی. ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے. مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. डॉक्टर साहब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगे कुर्सी से नीचे उतार ली और ऐनक के खोल के ऊपर से मुझे बड़े गौर से घूरा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और वजा कता में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और एक कागज घुटने पर रखकर गालिबा नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए। मुझे यकीन है कि अगर वक्त उन्हें मोहलत देता तो वो मेरे लिए बदहजमी का इलाज तजवीज फरमाते, लेकिन ऐन उस वक्त गांव के नंबरदार ने वहां पहुंचकर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया। डॉक्टर साहब बेतहाशा भागकर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। अब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ आवरी पर अपनी खुशनूदी का इजहार फरमाया और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। मैंने भी बड़ी वजादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टंक्चर आयोडीन, सोडा बाइकार्ब, एस्प्रीन और बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद ना थी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर या बाज औकात अगले साल मौसूल होता है। पेज नंबर 94। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस तखीर का अस्पताल की हर दिल अजीजी या अफादियत पर हरगिज कोई बुरा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हों या ना हों, मरीज बहरहाल आते ही रहते थे। और फिर डॉक्टर साहब ने अपने रजिस्टर के एदाद शुमार से मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुतवातिर कई बरस से मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब इस मकाम पर पूरे 9 बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। उन्हें फख्र था कि इस दौरान मलेरिया के मरीजों में 75%, पेचिश के मरीजों में 50% और खारिश के अमराज में 45% का इजाफा हो गया था। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना 1931 में हुआ था। डॉक्टर साहब ने मुझे अस्पताल का इनडोर वार्ड भी दिखाया, जिसमें गालिबन उनकी भैंस बांधी जाती थी, क्योंकि एक कोने में ताज़ा गोबर के निशान थे जिन्हें अभी अभी साफ किया गया था। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे विजिटर्स बुक पेश की कि मैं इसमें अपनी राय का इजहार करूं। मैंने फिल बदीहा अर्ज किया, दुनियाए तिब में यह अस्पताल संग मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीजों की तादाद रोज अफजूं तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर ख्वाह इंतजाम है, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदोरफ्त पर कोई खास पाबंदी नहीं है। पेज नंबर 95। चंद माह बाद जब मैं दोबारा इसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर्स बुक के जिस वर्क पर मेरे पहले मुआयने की राय दर्ज थी वो गायब था। माखोजस शहाब नामा मश। सवाल नंबर 1, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की? बे, मुसन्निफ ने देहात में घूमने के शौक की क्या वजह बयान की है? जीम, मुसन्निफ को गांव में जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल क्या था? दाल, मुसन्निफ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड का कैसा पाया था? हा, गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्द अमल था? वाओ, डॉक्टर साहब किस हुलिये में मरीजों का मुआयना कर रहे थे? सवाल नंबर 2, दर्ज अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, खंदा पेशानी। नंबर 2, हिकमत। नंबर 3, दूर उफ्तादा। नंबर 4, सूरत। नंबर 5, खुशनूदी। नंबर 6, फिल बदीहा। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, डाक बंगले की रियायत से याद आ गई। नंबर 1, एक डिस्पेंसरी। नंबर 2, एक इमारत। नंबर 3, एक मस्जिद। नंबर 4, एक गाड़ी। पेज नंबर 96। बे, मुसन्निफ की वजाकता में कोई अलामत मौजूद नहीं थी। नंबर 1, डिप्टी कमिश्नर की। नंबर 2, डिप्टी डायरेक्टर की। नंबर 3, डिप्टी सेक्रेटरी की। नंबर 4, डिप्टी कंट्रोलर की। जीम, आंख सब कुछ देखती है। नंबर एक पत्थर की, नंबर दो इंसान की, नंबर तीन हैवान की, नंबर चार फरिश्ते की। दाल, जो अस्तबल नजर आया वो दरअसल था नंबर एक डाक बंगला, नंबर दो डाकखाना, नंबर तीन अस्पताल, नंबर चार अजायब घर। हाँ, डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना हुआ था नंबर एक सन 1930 में, नंबर दो सन 1931 में, नंबर तीन सन 1932 में, नंबर चार सन 1933 में। सवाल नंबर चार, दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर कीजिए। अलिफ, डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर डैश बैठे थे। बे, मरीज अपनी डैश के मुताबिक अपने मर्ज की खुद तशखीस करता था। जीम, गालिबन ये नुस्खा डैश के तौर पर इस्तेमाल होता था। दाल, मुझे वहम होने लगता है कि मैं जिला डैश का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब पूरे डैश बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। पेज नंबर 97। सवाल नंबर 5, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, चीनी के बने हुए जरूफ 150 साल पुराने थे। बे, अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी। जीम, इंसान की आंख अमूमन तिरछी होती है। दाल, यहाँ पर दवाइयों की जगह तावीज़ों से इलाज किया जाता है। हाँ, वार्ड में बकरी बांधने का भी बंदोबस्त है। सवाल नंबर 6, गुज़िश्ता कल सुबह से रात तक के वाक़यात लिखिए। सरगर्मियाँ, नंबर एक, अपने इलाके की डिस्पेंसरी या हस्पताल की सेहत व सफाई के बारे में मुतालिका महकमे को खत लिखिए। नंबर दो, अदबी सहाफती और कानूनी तहरीरों का फ़र्क बयान करें। आप बीती उस तसनीफ को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ ने अपने हालात व वाक़यात खुद कलम बंद किए हों। हिदायत बराए असातज़ा, नंबर एक, तुलबा को डायरी या रोज़नामचा लिखने की तरगीब दीजिए। नंबर दो, रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात पर मुश्तमिल अखबारी तराशों का अल्बम तैयार करने की तरगीब दीजिए। नंबर तीन, अदबी सहाफती दफ्तरी और कानूनी तहरीर के फ़र्क को मिसाली नमूनों से वाज़ेह कीजिए। पेज नंबर 98, मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग, विलादत 1884, वफात 1947। मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज की तालीम वहीं हासिल की। तालीम से फारिग होकर हैदराबाद दक्कन चले गए। वहां पहले महकमाए तालीम में मुलाजिम रहे, फिर महकमाए इंतज़ामिया में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहां तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे। उनके मजामीन में मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा बहुत मशहूर हैं। दिल्ली की बामहावरा ज़बान संजीदा ज़राफ़त के अलावा वाक़िया निगारी के लिहाज से भी इन मजामीन को उर्दू नसर के शहपारों में शुमार किया जाता है। मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग के मजामीन के मजमूए मजामीन फरहत के नाम से शाया हो चुके हैं। पेज नंबर 99। तालिबे इल्मों को देखो तो ऊँह का जोर सबसे ज्यादा इन्हीं में पाओगे। साल भर खेलकूद में गुजार दिया, इम्तिहान का ख्याल आया तो ऊँह कर दी, यानी कल से पढ़ेंगे। आखिर ये ऊँह यहाँ तक खींची कि इम्तिहान आ गया, फेल हुए इस फेल होने पर भी ऊँह कर दी। ये ऊँह बहुत ही बामानी होती है। उसके एक मानी तो ये है कि बाप जिंदा हैं, खाने पीने और उड़ाने को मुफ्त मिलता है, अगर वो भी मर गए तो जायदाद मौजूद है, कर्जा देने को साहूकार तैयार हैं, फिर पढ़ लिख कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। दूसरे मानी ये है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 बरस ही की तो है, अगर मिडिल के इम्तिहान में 2-4 दफ़ा फेल हो चुके हैं तो क्या हर्ज है। 30 साल की उम्र तक भी इंटर पास कर लिया तो सिफारिश के बल पर कहीं ना कहीं चिपक ही जाएंगे, या कम से कम विलायत जाने का कर्जा तो ज़रूर मिल जाएगा, और ज़रा कोशिश की तो बाद में माफ़ हो सकेगा। इस फेल होने पर इधर उन्होंने ऊँह की और उधर माँ बाप ने ऊँह की। पेज नंबर 100। इस सूरत में अब्बा और अम्मा की ऊँह का दूसरा मतलब है, यानी ये कि बच्चा अभी फेल हुआ है, दिल टूटा हुआ है, जरा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि रो रो कर अपनी जान हलकान कर ले या कहीं जाकर डूब मरे। गर्ज इस ऊह ने साहबजादे तालीम की, साहबजादे साहब की तालीम का खात्मा बिलखैर कर दिया। घरवाली की ऊह सबसे खतरनाक होती है। किसी मामा पर खफा हो रही हैं, वो बराबर जवाब दिए जाती है, ये ऊह करके खामोश हो जाती हैं। लीजिए, नौकर शेर हो गए, घर का सारा इंतजाम दरहम बरहम, खुद उनके इख्तियारात सल्ब, घर की हुकूमत उनसे छिन, मामाओं के हाथ में चली गई। कोई चीज चोरी हो गई, बेगम साहब ने इधर उधर ढूंढा, कुछ थोड़ा बहुत गुल मचाया, आखिर ऊह करके बैठ गई। अब क्या है, पटारी में से कत्ता छालिया गायब, खर्च की संदूकची में से रुपए पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब, कर्ज रफ्ता रफ्ता सारे घर का सफाया हो गया। मामा ने कोई रकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई, उन्होंने वही अपनी ऊह का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में अलमारी के पीछे से शीशे और चीनी का इतना टूटा हुआ सामान निकला कि खास से कई संदूक भर जाएं। बच्चों ने कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची, दरवाजों पर पेंसिल से कीड़े मकोड़े बनाए। पहले तो ये थोड़ी बहुत बिगड़ी, फिर ऊह करके चुप हो गईं। अब रहे मियाँ, तो उनकी ऊह सबसे ज्यादा तेज है। बीवी किसी बात पर बिगड़ी, मियाँ ऊह कहकर बाहर चले गए। पेज नंबर 101। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी की ये ऊँह बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून सलाहकार भी नहीं कर सकते। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने ऊँह कर दी, चलो लड़ाई का खात्मा हुआ। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने ऊँह कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर ऊँह की बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊँह नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊह की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फतह पर ऊह की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब रहे ऊह वाले, जो लापरवाही से शिकस्त और फतह को बराबर समझते हैं, उनका बस खुदा ही मालिक है। दुनिया से अगर मिट ना जाएंगे तो कम से कम जूतियां हमेशा जरूर खाएंगे। माखूज़ मजमुआ मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग, जिल्द सोम, मजामीन। पेज नंबर 102। मश्क। सवाल नंबर 1, दर ज़ेल सवालों के जवाब दीजिए। अलिफ, तालिब इल्मों के ऊँह करने की वजूहात तहरीर कीजिए। बे, इस सबक में मुसन्निफ ने कहाँ कहाँ तंज और कहाँ कहाँ मिजाह से काम लिया है, 3 मवाक़े तहरीर कीजिए। जीम, इस सबक में अब्बा और अम्मा की ऊँह का क्या मतलब है। दाल, मियाँ बीवी की ऊँह कैसे फ़ायदा मंद है। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, कर्जा देने को तैयार हैं। नंबर 1, उस्ताद। नंबर 2, माँ बाप। नंबर 3, साहूकार। नंबर 4, दोस्त। बे, अलमारी के पीछे से टूटा सामान निकला। नंबर 1, शीशे और चीनी का। नंबर 2, मिट्टी और शीशे का। नंबर 3, प्लास्टिक और कागज़ का। नंबर 4, स्टील और तांबे का। जीम, ऊह करके चुप होने से नौकर हो जाते हैं। नंबर 1, शेर। नंबर 2, बाअदब। नंबर 3, दिलेर। नंबर 4, नाफरमान। दाल, बच्चों ने दीवारों पर लकीरें खींची। नंबर 1, चाक से। नंबर 2, कोयले से। नंबर 3, रंग से। नंबर 4, चूने से। सवाल नंबर 3, सबक में मौजूद महावरात तलाश करके उनके मानी तहरीर कीजिए। पेज नंबर 103। सवाल नंबर 4, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज में से साबिक़े और लाहिक़े अलग अलग करके लिखिए। बदनसीब, बदकिस्मत, दागदार, लाइलाज, पायदार, शुक्रगुजार। सवाल नंबर 5, दर ज़ेल इबारत का मफहूम माँ सियाक़ो सबाक तहरीर कीजिए। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊँह नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊँह की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फतह पर ऊँह की اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ سرگرمیاں۔ نمبر ایک، طلبہ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ کلاس میں اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ نمبر دو، طلبہ اس سبق کے مصنف کی دیگر مزاحیہ تحریر کسی اخبار یا رسالے سے کاٹ کر چارٹ پر آویزہ کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ۔ نمبر ایک، طلبہ کو دفتری اور مزاحیہ تحریر کا فرق واضح کر کے بتائیے۔ نمبر دو، محاورے تلاش کرنے میں بچوں کی مدد کیجیے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 6 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 میں سنیں۔